अध्याय 66 शाऊल की मृत्यु। इसराइल और पलिश्तियों के बीच फिर से युद्ध घोषित हुआ। यिज्रेल के उत्तरी छोर पर पलिश्ती इकट्ठे हुए और उन्होंने शूनेम में पड़ाव डाला, जबकि शाऊल और उसकी सेनाओं ने कुछ मील दूर तराई की दक्षिण सीमा पर गिलबो पर्वत के तले अपना डेरा डाला। इसी तराई से गिदोन ने अपने 300 पुरुषों सहित मिद्यानी सेना को खदेड़ भगाया था, लेकिन जिस भावना ने इसराइल को छुटकारा दिलाने वाले को प्रेरित किया था वो उस भावना से बहुत भिन्न थी जिसने राजा के हृदय को प्रभावित किया था। गिदोन याकूब के सामर्थी परमेश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ा था, लेकिन शाऊल स्वयं को अकेला और असुरक्षित महसूस कर रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। जब उसने फैली हुई पलिश्ती सेना पर दृष्टि डाली वो डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत होकर कांप उठा। शाऊल को पता चला था कि दाऊद और उसकी सेना पलिश्तियों के साथ थी और उसे लगा कि यिशै का पुत्र इस अवसर का लाभ उठाकर उस पर किए गए अत्याचार का प्रतिशोध लेगा। वो अत्यंत दुखी था। उसी के अविवेकीय आवेग ने उसे परमेश्वर द्वारा चुने हुए को नष्ट करने के लिए उकसाया था और संपूर्ण राष्ट्र को खतरे में डाल दिया था। दाऊद का पीछा करने में उसने अपने राष्ट्र की सुरक्षा की उपेक्षा की थी। उसकी असुरक्षित अवस्था का लाभ उठाकर पलिश्ती नगर के मध्य तक पहुंच गए। दाऊद को नष्ट करने के लिए शैतान शाऊल से दाऊद को ढूंढने का भरसक प्रयत्न करने का आग्रह कर रहा था। ये वही दुष्टात्मा थी जिसने पलिश्तियों को शाऊल के विनाश और परमेश्वर के लोगों की पराजय के लिए अवसरवादी होने की प्रेरणा दी थी। कितनी बार शैतान द्वारा इसी नीति को प्रयोग में लाया जाता है। वो कलीसियाओं में कलह और ईर्ष्या की चिंगारी सुलगने के लिए अपवित्र हृदयों को प्रभावित करता है और फिर परमेश्वर के लोगों की विभाजित अवस्था का लाभ उठाकर वो अपने दूतों को उनका विनाश करने के लिए जगाता है। प्रातःकाल शाऊल को पलिश्तियों से युद्ध करना था। आने वाले विनाश की काली छाया ने उसे घेर लिया। वो सहायता और मार्गदर्शन के लिए तड़प उठा, लेकिन उसका परमेश्वर से सम्मति मांगना व्यर्थ ठहरा। प्रभु ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। दीनता और ईमानदारी से उसके पास आने वाले एक भी जन से वो मुंह नहीं फिराता। फिर उसने शाऊल को उत्तर क्यों नहीं दिया? राजा ने अपने ही कृत्यों द्वारा परमेश्वर से पूछने के सभी तरीकों के लाभ को खो दिया था। उसने भविष्यवक्ता शामुएल की सम्मति का तिरस्कार किया था। उसने परमेश्वर के चुने हुए दाऊद को प्रवास दिया था। उसने परमेश्वर के याजकों की हत्या की थी। क्या वो स्वर्ग द्वारा नियत किए गए संपर्क के माध्यमों को काट डालने के बाद भी परमेश्वर के उत्तर देने की अपेक्षा कर सकता था? पाप के द्वारा उसने अनुग्रह के आत्मा को दूर कर दिया था, और क्या वो परमेश्वर से स्वप्नों और रहस्योद्घाटनों द्वारा उत्तर प्राप्त कर सकता था? शाऊल दीनता और पश्चाताप के साथ ईश्वर की ओर नहीं फिरा। वो पापों के लिए क्षमा या परमेश्वर के साथ पूर्ण मिलन के लिए नहीं, वरन शत्रुओं से छुटकारे का प्रयास कर रहा था। अपने व्यक्तिगत हठ और विद्रोह के कारण उसने स्वयं को परमेश्वर से अलग कर लिया था। प्रायश्चित के अभाव में वापसी संभव नहीं थी, लेकिन अपनी वेदना और निराशा में अभिमानी सम्राट ने अन्य माध्यम से सहायता प्राप्त करने का निश्चय किया। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी ऐसी स्त्री का पता लगाओ जो ओझा हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछ सकूं। शाऊल को प्रेत विद्या की विशेषता का पूरा ज्ञान था। ये प्रभु द्वारा स्पष्ट रूप से निषेध किया गया था, और जो भी इसकी अपवित्र विद्या का अभ्यास करता था वो मृत्यु की दंडाज्ञा प्राप्त करता था। शामुएल के जीवित होने के समय शाऊल ने आदेश दिया था कि सभी ओझाओं और भूत सिद्धि करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाए, किंतु अब निराशा से उत्पन्न दुस्साहस के कारण उसने उस ओझा का सहारा लिया जिसे उसने घृणित व्यक्ति के तौर पर निंदनीय ठहराया था। राजा को बताया गया कि इंदौर में एक ओझा रहती थी। इस स्त्री ने स्वयं को शैतान के नियंत्रण में समर्पित कर दिया था और वो उसकी योजनाओं को संपन्न करती थी, और बदले में बुराई का राजकुमार उसके लिए आश्चर्य कर्म करता था और उस पर गुप्त बातें प्रकट करता था।
शाऊल भेष बदलकर
केवल 2 सेवकों सहित रातों रात उस जादूगरनी के आश्रय को ढूंढने निकल पड़ा। क्या ही दयनीय दृश्य था। इज़राइल के राजा को शैतान अपनी इच्छा से बंदी बनाकर लिए जा रहा था। मनुष्य के पदचाप के लिए कितना अंधकारमय था वो पथ जो उसके द्वारा चुना गया, जो परमेश्वर के आत्मा के पवित्र प्रभाव का प्रतिशोध करके लगातार मनमानी करता रहा था। उसके दासत्व से भयानक और कौन सा बंधन इतना भयानक हो सकता है जो स्वयं को सबसे बुरे तानाशाह यानी स्वयं के नियंत्रण में दे देता है। परमेश्वर में विश्वास और उसकी इच्छा का पालन ही वे शर्तें थीं जिनके आधार पर शाऊल इज़राइल का राजा हो सकता था। यदि वो इन्हें अपनी शासन अवधि में बनाए रखता तो उसका राज्य सुरक्षित रहता। परमेश्वर उसका मार्गदर्शक होता और सर्वशक्तिमान उसकी ढाल। परमेश्वर ने बहुत दिनों तक उसके साथ धैर्य रखा था और हालांकि उसके आग्रह और विद्रोह ने उसकी आत्मा में पवित्र वाणी को शांत कर दिया था, उसके पास प्रायश्चित का अवसर था। लेकिन जब संकट के समय वो परमेश्वर को पीठ दिखाकर शैतान के साथी से प्रकाश प्राप्त करने गया, उसने उस अंतिम डोर को भी काट डाला जो उसे उसके सृष्टिकर्ता से बांधे हुए थी। उसने स्वयं को उस दुष्टात्मा की शक्ति के अधीन कर दिया जिसका अभ्यास उस पर वर्षों से किया जा रहा था और जो उसे विनाश की अंतिम सीमा पर ले आई थी। अंधकार की आड़ में शाऊल और उसके सेवकों ने तराई को पार किया और पलिश्ती सेना के पास से निकलते हुए खड़ी पहाड़ी को पार कर वे एंदोर की जादूगरनी के एकांतवास में पहुंच गए। यहां वो स्त्री जिसके पास सिद्ध प्रेत था छिपकर रहती थी कि वो गुप्त रूप से अपना अपवित्र जादू टोना करती रहे। शाऊल भेष धारण किए हुए तो था, लेकिन उसके ऊंचे कद और राजसी चालढाल से पता चल गया कि वो साधारण सैनिक न था। स्त्री को संदेह हुआ कि वो शाऊल था और कीमती उपहारों ने उसके संदेह को और बढ़ा दिया। जब शाऊल ने विनती की, प्रेतों के द्वारा मुझे मेरा भविष्य बताओ, उस व्यक्ति को बुलाओ जिसका मैं नाम लूं। स्त्री ने कहा, तुम जानते हो शाऊल ने क्या किया है। उसने ओझा और भाग्यफल बताने वालों को इज़राइल देश छोड़ने को विवश किया है। तुम मुझे जाल में फंसाकर मार डालना चाहते हो। फिर शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। और जब स्त्री ने कहा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं, उसने उत्तर दिया, शामुएल। अपने मंत्रोच्चारण और जादू टोने का अभ्यास करने के बाद उसने कहा, मैंने देवताओं को पृथ्वी में से चढ़ते हुए देखा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वो शामुएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। वो परमेश्वर का पवित्र भविष्यवक्ता नहीं था जो ओझा के मंत्रोच्चार की माया से प्रकट हुआ। शामुएल दुष्टात्माओं के उस बसेरे में उपस्थित नहीं था। वो अलौकिक प्रतीति केवल शैतान की शक्ति से उत्पन्न हुई थी। वो शामुएल की आकृति को उतनी ही सरलता से धारण कर सकता था जितनी आसानी से उसने बीहड़ में मसीह को प्रलोभन देने के समय प्रकाश के स्वर्गदूत का रूप धारण किया था। स्त्री के मंत्रोच्चार की माया के प्रभाव में उसके पहले शब्द राजा को संबोधित किए गए, तूने मुझे क्यों धोखा दिया, तू तो शाऊल है। इस प्रकार भविष्यद्वक्ता का अवतार धारण करने वाली दुष्टात्मा का पहला कृत्य इस दुष्ट स्त्री के साथ गुप्त संपर्क कर उसे छल की चेतावनी देना था जिसका अभ्यास उस पर किया गया था। ढोंगी भविष्यवक्ता की ओर से शाऊल के लिए यह संदेश था, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है। और शाऊल ने उत्तर दिया, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे न तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के द्वारा, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं।
जब शामुएल जीवित था, शाऊल ने उसकी सम्मति को तिरस्कृत किया था और उसकी ताड़ना से वो अप्रसन्न हुआ था। लेकिन अब संकट की घड़ी में उसे महसूस हुआ कि भविष्यवक्ता का मार्गदर्शन ही उसकी एकमात्र आशा थी, और स्वर्ग के प्रतिनिधि के साथ संपर्क करने के लिए उसने व्यर्थ ही नरक के दूत का सहारा लिया था। शाऊल ने स्वयं को पूर्ण रूप से शैतान के अधीन कर दिया था, और अब जिसे एकमात्र प्रसन्नता विनाश करने और कष्ट पहुंचाने में होती है, अप्रसन्न राजा के विनाश को संपन्न करने के लिए इस सुअवसर का लाभ उठाया। शाऊल के वेदनापूर्ण विनती के उत्तर में प्रकट रूप से शमूएल के होठों से ये भयावह संदेश आया, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझ से आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। उसके विद्रोह के दौरान पूरे समय शैतान ने शाऊल को धोखा दिया और उसकी झूठी प्रशंसा की। प्रलोभन देने वाले का कार्य पाप को छोटा दिखाना, अवज्ञा के पथ को सरल और आकर्षक बताना, परमेश्वर की धमकियों और चेतावनियों के प्रति मन को उदासीन कर देना होता है। अपनी सम्मोहक शक्ति के द्वारा शैतान ने शाऊल को शमूएल की चेतावनियों और झिड़कियों की अवज्ञा करने में न्याय संगत होने का दावा करवाया, लेकिन अब संकट के समय में वो पलटवार करके उसके पाप की गंभीरता को और क्षमा की आशाहीनता को प्रस्तुत कर उसे मायूसी की ओर ले गया। उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने और उसके साहूस को नष्ट करने या उसे विनाश और निराशा में धकेलने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं चुना जा सकता था। शाऊल भूख और थकान से बेहोश हुआ जा रहा था। वो भयभीत था और अंतरात्मा से प्रताड़ित था। जैसे ही वो भयावह भविष्यवाणी उसके कानों में पड़ी, उसका शरीर आंधी के प्रभाव में बांझ वृक्ष की तरह लहराया और वो मुंह के बल धरती पर गिर पड़ा। ओझा भयभीत हो गई। इसराइल का राजा उसके सम्मुख मृतक के समान पड़ा था। यदि वो उसके आश्रय स्थल में नष्ट हो जाता तो उसके लिए क्या बैक्स स्थिति होती? उसने शाऊल से उठकर भोजन करने की विनती की और उसने आग्रह किया कि उसकी अभिलाषा पूरी करने के लिए उसने अपने प्राण दाव पर लगा दिया थे, इसलिए उसे अपने स्वयं के प्राण बचाने के लिए उसकी विनती को स्वीकार करना होगा। उसके सेवकों ने भी विनती की। अंत में शाऊल मान गया और स्त्री ने एक तैयार किए हुए बछड़े का मांस और अखमीरी रोटी फूर्ती से बनाकर उसके आगे परोसा। क्या दृश्य था! जादूगरनी की गुफा में, जिसमें कुछ समय पहले विनाश के शब्द गूंज रहे थे, शैतान के दूत की उपस्थिति में वो जो इसराइल के राजा के तौर पर परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त था, दिन के भयंकर संघर्ष की तैयारी में भोजन करने बैठा। पौ फटने से पहले शाऊल अपने सेवकों सहित संघर्ष की तैयारी करने के लिए इसराइल की छावनी में लौट आया। अंधकार की आत्मा से सलाह लेकर शाऊल ने स्वयं को नष्ट कर लिया था। आशाहीनता की दहशत से उत्पीड़ित शाऊल के लिए अपनी सेना को साहस की प्रेरणा देना असंभव था। सामर्थ्य के स्रोत से अलग होकर वो इसराइल के परमेश्वर को उसके सहायक के रूप में देखने के लिए विवश नहीं कर सकता था। इस प्रकार अनर्थ की भविष्यवाणी ने अपना कार्य स्वयं संपन्न किया। शुनेम की तराई में और गिलबो की ढलान पर इसराइल की सेनाओं और पलिश्तियों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। यद्यपि एंदोर की गुफा के भयावह दृश्य ने उसके हृदय को निराशा से भर दिया था, फिर भी शाऊल निर्भीक होकर अपने सिंहासन और अपने राज्य के लिए बहादुरी से लड़ा। लेकिन ये सब व्यर्थ में था। इसराइली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। राजा के तीन पुत्र भी मारे गए। धनुर्धारियों ने उसे घेर लिया। उसने अपने चारों ओर योद्धाओं को गिरते हुए और अपने राजकुमार पुत्रों को तलवार से घात हुए देखा था। वो स्वयं घायल था। न वो लड़ सकता था, न भाग सकता था। बचकर निकल जाना असंभव था और पलिश्तियों द्वारा जीवित न पकड़े जाने के लिए निश्चित उसने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझमें भोंक दे। जब उस व्यक्ति ने परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाने से मना कर दिया, तब शाऊल ने अपनी ही तलवार को खड़ी कर उस पर गिरकर अपने प्राण ले लिए। इस प्रकार इसराइल का पहला राजा आत्महत्या का दोष अपने ऊपर लेकर नष्ट हो गया। उसका जीवन असफल रहा था और वो अपमान और निराशा को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने स्वयं की विकृत इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध खड़ा किया। पराजय की सूचना इसराइल के लिए भय का संदेश लेकर दूर दूर तक फैल गई। लोग नगर छोड़कर भाग गए और पलिश्तियों ने बिना रुकावट के वहां अपना स्वामित्व स्थापित किया। परमेश्वर से स्वतंत्र शाऊल का शासन उसके लोगों के विनाश का कारण बना। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं की संपत्ति को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके तीनों पुत्रों के शव मिले। अपनी विजय की पूरी करने के लिए उन्होंने शाऊल का सिर काटा, उसके कवच को उसके शरीर से अलग कर दिया, फिर उसका रक्त रंजित सिर और कवच विजय चिन्ह के तौर पर पलिश्तियों के देश में इसलिए भेजा कि उसके देवताओं और साधारण लोगों में ये शुभ समाचार पहुंचे। उसके कवच को आश्तोरेत नामक देवी के मंदिर में रखा गया और उसके सिर को दागोन के मंदिर में जड़ दिया गया। इस प्रकार विजय की महिमा का श्रेय इन कृत्रिम देवी देवताओं को दिया गया और यहोवा के नाम का अपमान किया गया। शाऊल और उसके पुत्रों के शवों को घसीटकर गिलबो के पास बेतशान नामक शहर में लाया गया, जो यर्दन नदी के निकट था। यहां उन्हें मांसाहारी पक्षियों द्वारा खाए जाने के लिए जंजीरों से लटका दिया गया। लेकिन याबेश गिलाद के शूरवीर शाऊल के बीते सुखी वर्षों में उसके द्वारा उनके नगर के छुटकारे को स्मरण कर राजा और उसके पुत्रों के शवों को बचाकर ले आए व उन्हें सम्मानपूर्वक मिट्टी देकर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। रातों रात यर्दन को पार कर वे शाऊल और उसके पुत्रों के शव बेतशान की शहरपनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं उन्हें जला दिया, और उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। इस प्रकार 40 वर्ष पूर्व किए गए श्रेष्ठ कार्य ने शाऊल और उसके पुत्रों के लिए अपमान और पराजय की उस दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी में नम्र और दयावान हाथों द्वारा मिट्टी दिया जाना संभव किया।